नमस्कार दोस्तों, मोबाइल एनिस से मैं आपका दोस्त योगेश। आज ऐसे दो महान विचारों के धनी जो कि समाज में सर्वव्याप्त समाजवादी, एक और 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती, वही 12 अक्टूबर को राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि मनाई जाती है। स्वतंत्र भारत की राजनीति और चिंतक धारा पर जिन गिने चुने लोगों के व्यक्तित्व का गहरा असर हुआ है वह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण प्रमुख रूप से थे। देश की राजनीति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान और स्वतंत्रता के बाद ऐसे कई नेता हुए जिन्होंने अपने दम पर शासन का रुख बदल दिया। आज हमारे साथ इन दोनों महान विचारों को हमारे साथ साझा करने के लिए समाजवादी चिंतक एवं वरिष्ठ पत्रकार रघुजी ठाकुर सर जुड़े हुए हैं। सर, मोबाइल आने पर स्वागत सर आपका।
आपको धन्यवाद योगेश भाई और मोबाइल वाणी की सब श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद।
जी सर। सर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी व जय प्रकाश नारायण जी, इन दोनों के विचारों को कितना प्रासंगिक देखते हैं सर आज वर्तमान परिवेश में?
डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश जी के बीच में, उनके विचारों के बीच में एक बड़ा साम्य था और इनका इतिहास भी एक प्रकार से अद्भुत साम्यता का और एकता का इतिहास है। जयप्रकाश जी पढ़ के आए थे अमेरिका से और डॉक्टर लोहिया पढ़ के आए थे जर्मनी से। डॉक्टर लोहिया जर्मनी में पढ़ के गांधी के दमक सत्याग्रह पर थी, शोध किया था, पीएचडी की थी। और जयप्रकाश जी भी अमेरिका से पढ़ के आए थे पर समय कुछ मार्क्सिस्ट विचार के नजदीक थे। देश में आने के बाद में, भारत लौट के आने के बाद में, ये दोनों लोग आजादी के आंदोलन में सक्रिय हुए और महात्मा गांधी के नेतृत्व में आजादी के आंदोलन में काफी मजबूत काम, काफी प्रभावी काम उन्होंने किया। जब 1942 में 9 अगस्त के समय महात्मा जी को गिरफ्तार कर लिया मुंबई से और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता लोग उस समय के जो थे सब गिरफ्तार हो गए, तो देश में अलग जगाने वाले दो ही नेता लोग थे। एक थे लोकनायक जयप्रकाश और दूसरे थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिन्होंने लगातार लोगों को जगाया, समानांतर रेडियो चलाया, जंगजू आगे बढ़ो नाम की पत्रिका निकाली और कोने कोने में देश के जाके देश के लोगों से कहा कि निराश नहीं होना है, लड़ते रहना है, हम अंग्रेजों को निकाल के बाहर करेंगे। बाद में गिरफ्तार होने के बाद भी दोनों को साथ में ही लाहौर जेल में रखा गया और लाहौर जेल में दोनों ने बड़ी यातनाएं सही। उसके बाद फिर गांधी के हस्तक्षेप पर उनका स्थानांतरण लाहौर से आगरा जेल हुआ। डॉक्टर लोहिया के स्वर्गीय पिता हीरालाल जी, वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, गांधी के अनुयायी थे और जेल से छूटने के बाद जब वो डॉक्टर लोहिया से मिलने आगरा जेल आ रहे थे जो कि किले में बनाया गया था, तब रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई। लोहिया को जब बताया गया कि भाई आपके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो लोहिया ने कहा कि मैं गुलाम सरकार के आदेश पर जेल से नहीं छूटूंगा, मैं पैरोल नहीं लूंगा, जब हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा तब अपने पिता को जाके संवेदना दूंगा। ये इन लोगों का जज्बा था। जयप्रकाश जी और हजारीबाग जेल से भागे गिरफ्तार होने के बाद में, फिर दोनों ने साथ साथ में काम किया। आजादी के बाद ये दोनों लोग कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से पहले काम करते रहे और फिर बाद में जब कांग्रेस ने शर्त लगाई कि नहीं आपको पार्टी में विलय करना पड़ेगा, तो फिर सोशलिस्ट पार्टी बनी और इन दोनों समाजवादी नेताओं ने अपनी भूमिका अदा की। अब आज हम लोग बात करें जयप्रकाश जी की। जयप्रकाश जी के जीवन के चार खंड हैं। एक खंड उनका है जिसकी चर्चा भी आपसे मैंने की, वो था आजादी के आंदोलन के समय का। दूसरा है सोशलिस्ट आंदोलन का, समाजवादी आंदोलन का। और जयप्रकाश जी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से लेकर के लगातार समाजवादी आंदोलन के नेता रहे, अग्रणी नेता रहे और उन्होंने समाजवाद के विचार को देश के कोने कोने पहुंचाया, जाके जगाया, आंदोलन के प्रदर्शन किए, झंडे किए। जयप्रकाश जी समाजवादी आंदोलन के नेता के साथ साथ है मजदूरों के भी नेता थे। एक जमाने में वो रेलवे मजदूरों के भी नेता थे, पीएनटी के भी नेता थे और उनके भी उन्होंने काफी संघर्ष किया। ये उनके जीवन का समाजवादी आंदोलन का दूसरा खंड था। 1952 के चुनाव के बाद उनको ऐसा लगा कि शायद अब देश में दलीय राजनीति की संभावनाएं कम है और एक प्रकार से जनता को जगाने का प्रयास करना चाहिए, इलेक्शन करना चाहिए। वो सर्वोदय में चले गए और फिर सर्वोदय में रहने के बाद जब उन्हें महसूस हुआ अपने जीवन के लगभग 20 साल को उन्होंने वहां लगाए तो उनको महसूस हुआ कि नहीं, इससे भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। अकेले आध्यात्मिक या वैचारिक पक्ष से होने वाला नहीं है, क्या संघर्ष की आवश्यकता है। वही जयप्रकाश जो राजनीति को छोड़ के सर्वोदय में गए थे, वही जयप्रकाश 1974 में जब गुजरात के नौजवानों ने महंगाई के सवाल को लेकर आंदोलन शुरू किया, छात्रों ने आंदोलन किया, तो उनका समर्थन करने गए और वहां उन्होंने देखा कि नौजवान जब खड़ा हो रहा है या खड़ा होता है तो बदलाव की धारा बनती है। उससे प्रभावित हुए और आके उन्होंने बिहार में बिहार आंदोलन शुरू किया और फिर बाद में वो संपूर्ण क्रांति के रूप में जाना गया। तो ये जयप्रकाश जी के जीवन का योगदान था कि उन्होंने आखिरी का जो आंदोलन का था जीवन का, वो संपूर्ण क्रांति का आंदोलन था। वो कहते हैं कि सारे समाज की हर व्यवस्था को बदलना है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक परंपराएं कुपरंपराएं सबको बदलना है, एक नया समाज गढ़ना है और एक अहिंसक तरीके से एक नैतिक तरीके से वो क्रांति करना है। डॉक्टर लोहिया के साथ ये था कि डॉक्टर लोहिया जब कांग्रेस पार्टी से लोग अलग होकर समाजवादी पार्टी बनी तो लोहिया उस समय अलग होने पक्ष में नहीं थे, परंतु जब लोगों ने सबने फैसला कर लिया, आचार्य रंजन जी थे, जयप्रकाश जी थे, फैसला कर लिया तो लोहिया अलग हुए। पर लोहिया ने कहा कि देखिए अलग हो रहे हैं, अब वापस नहीं आएंगे, अब लड़ेंगे। और लोहिया उसके बाद भी लगातार संघर्ष करते रहे। लोहिया का योगदान यह है कि लोहिया ने महात्मा गांधी की जो सत्ता की भूमिका थी उस भूमिका को लगातार जिंदा रखा। गांधी जी सर्वोदय में चले, जयप्रकाश जी सर्वोदय में चले गए, विनोबा जी के साथ चले गए, संघर्ष की भूमिका थोड़ी पीछे चली गई, परंतु लोहिया ने अपने जीवन काल में कभी भी जनता के संघर्ष को नहीं छुआ। लोहिया की कुछ बातों को आज आपके सामने रखें। लोहिया कहते थे कि अगर सड़कें खामोश हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगी। ये लोहिया कहना था, यानी अगर आपको संसदीय राजनीति को भी दुरुस्त रखना है तो फिर जनता को सड़क को गर्मा के रखना चाहिए। सड़क गर्मी होगी, गर्म रहेगी, सड़क पे हलचल होगी, आंदोलन होगी, प्रदर्शन होंगे, धरने होंगे, इसका असर संसद के ऊपर पड़ेगा। और लोहिया कहते हैं कि संसद जो है वो तब तक बाल संस्था है, अच्छा कुछ पैदा नहीं करती है जब तक कि जनता का दबाव नहीं पड़ता है। यानी कोई अच्छा से अच्छा कानून तब बनता है जब जनता के संघर्ष का दबाव पड़ता है। ये लोहिया कहना था। लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमे 5 साल इंतजार नहीं करती, यानी हमारा चुनाव हो गया अब अगले चुनाव का जाकर ही नहीं, हमको लगातार मुद्दों को लेकर लड़ना है, बोलना है, संघर्ष करना है। और उन्होंने अपने जीवन में हर सवाल को लेकर जो के सामने आया संघर्ष किया। अब आप देखिए कि जब तिब्बत का सवाल आया और भारत सरकार और चीन के बीच दोस्ती हो रही थी, पल्सी समझौता हो रहा था, यानी 1956 की बात मैं आपसे कह रहा हूँ, तो एकमात्र लोहिया थे जो उसका पंचशील का विरोध कर रहे थे। लोहिया कह रहे थे कि ये चीन हिंदुस्तान पर हमला करेगा, ये चीन हमला करने वाला है, ये चीन की जो स्वभाव और जो वृत्ति है, ये साम्राज्यवादी वृत्ति इसकी भी है, हमला करेगा। उस समय 1959 में जब हो रहा था की बात को नहीं माना, परंतु बाद में जब 62 पर हमला हुआ, चीन ने भारत पर हमला किया, तो सरकार को मानना पड़ा कि हमसे गलती हुई है और लोहिया ने ठीक सावधान किया था। तिब्बत के सवाल को लेकर भी लोहिया ने कहा था कि चीन ने तिब्बत की भू हत्या कर दी और लोहिया मानते थे कि तिब्बत जो है इसको आजाद करना चाहिए, तिब्बत की आजादी भारत की आजादी की अक्षुण्णता के लिए जरूरी है। तो लोहिया लगातार तिब्बत के सवाल को लेकर उठाते रहे। हिमालय के सवाल को लेकर लोहिया ने जो उठाया एक अलग ढंग से उठाया था। लोहिया हिमालय को पर्वत नहीं मानते थे, लोहिया हिमालय को अकेले केवल चीन और भारत के बीच की सीमा नहीं मानते थे, बल्कि लोहिया ये मानते थे कि पर्यावरण, प्रकृति, इस सारे सवालों को लेकर जो हिमालय की स्थिति है वो अपने आप में बेमिसाल है। तो हिमालय को अकेले सीमा रेखा नहीं मानना चाहिए, बल्कि हिमालय को एक प्रकार से एक दर्शन के रूप में देखना चाहिए कि जो दुनिया की मानवता के लिए जरूरी है। लोहिया ने सात क्रांतियां बताई, सात प्रकार के परिवर्तन जरूरी है।
जी सर, एक मिनट सर।
जी
सर, हाल ही में देश के 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं।
जी।
और एक तरफ सर एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया का गठबंधन बन गया है। वर्तमान में लोहिया के दृष्टिकोण को किस प्रकार देखते हैं और इससे जनता क्या महसूस कर रही सर?
देखिए, ये जो गठबंधन है ये गठबंधन उस प्रकार के गठबंधन नहीं है जिसकी कल्पना लोहिया ने की थी। दरअसल हिंदुस्तान में गठबंधन की राजनीति की जो रणनीति है, ये सिद्धांतिक रणनीति है, इसकी शुरुआत लोहिया ने की थी। और 60 के दशक में उन्होंने कहना शुरू किया था कि जो गैर सत्ताधारी या गैर कांग्रेसी दल है उनको एक कार्यक्रम के आधार पर एक मंच पर आना चाहिए। तो लोहिया की जो गैर कांग्रेसवाद की रणनीति थी उसके चार पहलू मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक तो ये कि लोहिया ने कहा कि जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम तय होना चाहिए। लोहिया ने खुद कार्यक्रम तय किया था 6 माह 2 साल और 5 साल, यानी गठबंधन कुर्सी के लिए नहीं, गठबंधन केवल सत्ता को बदलने के लिए नहीं, गठबंधन सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था को परिवर्तन के कार्यक्रम भी होना चाहिए। और तात्कालिक कार्यक्रम क्या होंगे 6 माह के 2 साल के 5 साल के, उनको तय किया जाना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, गठबंधन चुनाव के पहले हो और उनको एक अभियान चलना चाहिए ताकि लोगों में आपकी प्रतिबद्धता जाए कि हमने इन बातों को तय किया है, इसलिए तय किया है, हम लोग मिल रहे हैं तो इसलिए मिले हैं, हम लोग सत्ता के लिए नहीं मिले हैं, हम लोग इन मुद्दों के लिए मिले हैं, इन कार्यक्रमों के लिए मिले हैं। ये नंबर दो बात थी। नंबर तीन, लोहिया ने कहा था कि अगर ये जो गठबंधन बनता है और इनकी जो सरकारें बनती है अगर वो कार्यक्रम के ऊपर अमल नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ लड़के को तो और लोगों में जाओ कि देखिए ये धोखा कर रहे हैं, ये जनता से विश्वासघात कर रहे हैं। जैसे जब संसद की सरकारें बदली तो संसद की सरकारों में लोहिया ने हम नौजवानों से कहा, हम लोग उस समय युवा शाखा के थे, जाओ तुम लोग आंदोलन करो सरकार के खिलाफ, सुधराओ, सरकार रास्ते पर नहीं चल रही, तो अपनी ही सरकार को भी गिराने का काम करो, ये बात लोहिया कहते थे। दूसरे की सरकार गिराना और अपनी सरकार गिराना, इसमें अपनी सरकार गिराना और बड़ा क्रांतिकारी कदम है, काम है, क्योंकि इसमें बड़ा साफ से सबूत चाहिए। आप दूसरे की गलती बता सकते हैं तो अपनी गलती को लोग छिपाते हैं। आज यही हो रहा है कि एनडीए बोलेगा तो इंडिया के बारे में बोलेगा, इंडिया गठबंधन वाले बोलेंगे तो उनके बारे में बोलेंगे, और अपने अपने बीच के जो अपराध है उन पर कौन बोल रहा है? तो लोहिया ने कहा कि नहीं, आपको इसको एक खराब पड़ना पड़ेगा। और लोहिया का जो रणनीति थी सबसे क्रांति की रणनीति, वो इसका एक आधार थी कि इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए इसको होना चाहिए। दरअसल लोहिया एक निराश देश, निराश मन की जड़ता को तोड़ करके बदलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की रणनीति कल्पना की थी। गैर कांग्रेसवाद का मतलब अकेले कांग्रेस से नहीं था, वो एक गैर सत्तावाद है, यानी जो भी पार्टी स्थायी सत्ता में हो जाए, जो भी पार्टी लगातार सत्ता में आ जाए और जड़ता आने लगे तो उसके खिलाफ जो लोग हैं उनको कार्यक्रम के आधार पर लड़ना चाहिए। लोहिया ये बात कहते हैं, लोहिया इसलिए कहते थे कि सरकारों को बदलते रहा को जैसे रोटी को उलटते पलटते हैं ताकि रोटी जल न जाए, इसी प्रकार से सरकारों को पलटते रहना चाहिए। अब जो गठबंधन बना है, ये गठबंधन तो बना है पर इस गठबंधन का क्या कोई कार्यक्रम तय हुआ है? आज तक मुझे कोई कार्यक्रम ऐसा पढ़ने को नहीं आया है। अगर ये गठबंधन इसको कहे कि हाँ हमारी सरकार बनेगी तो ये जो वैश्वीकरण का दौर हमने शुरू किया, आप गलती की है, इसको हम समाप्त करेंगे। ये कहे कि जो निजीकरण हुए हैं इन सबको समाप्त कर देंगे। ये कहे कि जो अपराध किए गए हैं इन अपराधों को हम खत्म करेंगे। ये कहे कि जनता के साथ जो भेदभाव हो रहा है, न्याय हो रहा है, उसको खत्म करेंगे, तो फिर इस गठबंधन को भी वो सुख दे सकता है। पर अभी तक इंडिया गठबंधन का वैचारिक पक्ष कोई सामने नहीं आया है, ना इस पर कोई वैचारिक चर्चा हुई है, ना कोई सामूहिक कार्यक्रम जारी हुआ है। बल्कि अभी तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि आपस में बड़े मतभेद हैं। अभी से विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, हम लोग देख रहे हैं कि गठबंधन की कई पार्टियां चुनाव के मैदान में, जो सवालात आए हैं सामने उन सवालों के बारे में जिसको अलग अलग है। अभी बिहार में जाति जनगणना हुई, ये अच्छी चीज है, मैं मानता हूं कि होना चाहिए। और हमारी जो लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी है, हम लोग तो लगातार कई वर्षों से मांग करते हैं, 2011 और उसके पहले से भी कह रहे थे कि देश में जाति जनगणना होना चाहिए। अब कई सवाल हैं, जैसे एक सवाल ये है कि जब 2011 में जाति की जनगणना हुई थी उस समय सरकार कांग्रेस पार्टी की थी, उसने उस रिपोर्ट को जारी क्यों नहीं किया? अगर उस रिपोर्ट को जारी किया होता और लागू किया होता तो आज मुद्दा तो उन्हीं के हाथ होता ना। आज जो कह रहे हैं कि साहब ओबीसी यूबीसी ये उधर कहां भूल गए थे। खैर मैं जो बात कह रहा था कि अभी भी इसमें सोचना पड़ेगा, आगे जाके सोचना पड़ेगा। बिहार में उसके जातिगत जनगणना हुई, इसके परिणाम आए, उन परिणामों को आपने भी देखा है, पढ़ा है, सभी देश पढ़ रहा है। आज भी स्थिति ये है कि जो अति पिछड़ी जातियां हैं उन अति पिछड़ी जातियों का जो हिस्सेदारी है वो राष्ट्र बराबर है। एक आयोग बना था रोहिणी कमीशन, अभी हाल में बना था, उस रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को सरकार ने, भारत सरकार ने भी जारी नहीं किया और उसके तथ्य सामने आ चुके हैं। इस पिछड़ी जातियां हैं, यानी मंडल कमीशन ने लगभग 3600 जातियों को कहा था कि पिछड़ी जातियों में आती है। ये जातियां अकेली नहीं है, जातियों में गोत्र भी है, उपगोत्र भी है, सब शामिल है, उनकी संख्या बताई थी। आज 930 ऐसी जातियां हैं, उपजातियां हैं कि जो अति पिछड़ी भी आती है, जिनकी कोई हिस्सेदारी सरती राजनीति में है ही नहीं। आप आश्चर्य करिए, यानी इस देश की आबादी का मोटा मोटी तौर पे 20-30% लोग ऐसे हैं कि जिनका कोई एक बोलने वाला भी पार्लियामेंट में नहीं है, जिनके नाम का नहीं है, उनकी संख्या कम है। जो ताकतवर जातियां हैं जिनकी कुछ संख्या ज्यादा है उनको सारी हिस्सेदारी मिल जाती है, वो नेतृत्व में पहुंच जाते हैं, पर इन वर्गों की संख्या बहुत कम है, कोई 0.5% है, कोई 1% है, कोई 5% है, उनको बेचारों के लिए कोई अभिव्यक्ति नहीं है। तो लोहिया की बात को अगर लागू करना है और गठबंधन को लागू करना है तो गठबंधन को ये भी कहना चाहिए कि जाति जनगणना तो हम कराएंगे, परंतु जो 2011 की जाति जनगणना हो चुकी है उसकी रिपोर्ट के आधार पर तत्काल कार्रवाई करेंगे, नंबर एक। और नंबर दो, जो रोहिणी आयोग की रिपोर्ट है उसको भी हम लागू करेंगे। एनडीए सरकार है, एनडीए सरकार के जमाने में रोहिणी आयोग बना, परंतु आज मोदी जी उसको दबा के बैठे हुए, उसके लागू नहीं कर रहे हैं, जबकि अति पिछड़ी लोग के लिए वोट लेना चाहते हैं, विश्वकर्मा योजना के नाम पर वोट लेना चाहते हैं। अरे ठीक है, विश्वकर्मा योजना अच्छी योजना है, मैं नहीं कहता हूँ बुरी योजना है, परंतु आप देने वाले हैं उनको हिस्सेदारी भी तो दो। कब तक आपके सामने या सरकार के सामने सामान्य व्यक्ति देश का अपना हाथ पसार के खड़ा रहा है कि नहीं साहब हमारे हाथ में आप भीग डाली और आपको उसके ले दें, उसकी भी हिस्सेदारी होना चाहिए। तो मेरा कहना है कि जो गठबंधन है, गठबंधन को अपना कार्यक्रम तय करना चाहिए, गठबंधन को कार्यक्रम तय करके उसके साथ में अभियान चलाना चाहिए। और दूसरा, एक और जो बड़ी कमी मैं गठबंधन में देख रहा हूं, ये गठबंधन केवल संसदीय दलों का गठबंधन है। तो जो गैर संसदीय दल है जिनके संसद में कोई लोग नहीं है, पर आखिर उनकी भी कहीं ना कहीं मत प्रतिशत है, कोई 0.5% है, कोई 1% है, कोई 1.5% है, और जो विचार की पार्टियां हैं, तो क्या उन विचार की पार्टियों के लिए भी इस गठबंधन में कहीं कोई स्थान है, या फिर कुछ सोचा गया है? मुझे लगता है अभी तक इस बारे में नहीं है। तो अभी ये गठबंधन में सत्ता और मुख्य गठबंधन ज्यादा नजर आता है, तो जो सत्ता और मुख्य गठबंधन रहेगा तो उसकी सफलता असफलता को अर्थ जाएगा।
जी सर, सर मेरा अंतिम सवाल था और संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा। सर, 5 राज्यों में चुनाव है और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौम अन्याय को बर्दाश्त नहीं करती। सर, मतदाताओं को इसका संदेश देना चाहेंगे? सर,
मैं कहना चाहता हूँ कि मतदाता भाइयों, रोटी को पलटो। जो जहां सरकार हो, पिछले 5 साल की सरकार उसको बदलो। कोई सरकार हो, कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को बदलो। अगर 5 साल के बाद सरकारें बदलती रहेगी तो कुछ ना कुछ चरित्र बदलेगा, जड़ता कुछ टूटेगी, स्थिरता कुछ कम होगी। तो सरकार को बदलते रहो, इंतजार मत करो, और इससे जनता का दबाव बढ़ेगा, कार्यक्रमों पर दबाव बढ़ेगा। और जनता को इस बार चाहिए कि जनता अब अपने वोट का इस्तेमाल समाजवादी क्रांति के लिए करे, लोहिया के विचार के लिए करे, और यही हमारा सबको संदेश।
जी ठीक थे समाजवादी चिंतक एवं वरिष्ठ पत्रकार रघुजी ठाकुर, जिन्होंने मोबाइल वाणी पर राम मनोहर लोहिया जी की पुण्यतिथि और जयप्रकाश जी की जयंती पर अपने विचार मोबाइल के साथ साझा किए। रघु सर मोबाइल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद रघु जी, और आपके श्रोताओं को धन्यवाद। आप जिस प्रकार का साहसिक काम कर रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आज लखनऊ में हूँ और बाराबंकी जा रहा हूँ, लखनऊ के मित्रों ने भी मुझसे आपके इस कार्यक्रम की चर्चा की और बताया आपका कार्यक्रम अब मध्यप्रदेश की सीमाओं से बाहर हटके यूपी तक पहुंचा है। हमारी शुभकामनाएं कि मोबाइल वाणी हिंदुस्तान के कोने कोने में जाए और वैचारिक क्रांति की बातों को उठाता रहे। आपको धन्यवाद।
जी मोबाइल सबका दोस्त योग।